क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां? तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटे नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये जमी आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है।
ओम शांति। उठ कदम बढ़ा कि तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन है और क्रांति की तू शान है। क्रांति अर्थात परिवर्तन, क्रांति अर्थात बदलाव, क्रांति अर्थात पुरानी सत्ता को उखाड़ कर फेंकना और नई सत्ता को लाना। क्रांति अर्थात सत्ता पलट, पुराना जो जो है, जो जो जर्जर है, जड़ीभूत है, उस सब को नकारना। जो नया है उसका आह्वान, जो नया है उसका आगाज। क्रांति अर्थात शुरुआत, क्रांति अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, क्रांति अर्थात रिवॉल्यूशन, म्यूटिनी, विद्रोह, विप्लव। क्रांतिकारी अर्थात द वन हु इज रेबेलियस, उसे स्वीकार ही नहीं। जो है तो वो क्रांति लानी। शुरुआत हम स्वयं से करेंगे और क्रांति प्रकंपन जो फैलेगा। एक यहूदी कहानी है, अ ज्यूइश स्टोरी, जिसमें एक व्यक्ति, एक यहूदी, एक लेटेस्ट स्कूटर खरीदता है। पर जब वो स्कूटर खरीदता है तो उसे ये कंफर्म करना है कि एक यहूदी के लिए स्कूटर चलाना ठीक है, धर्म अनुकूल है। इसलिए वो अपने धर्म गुरु के पास जाता है, रबाए, द रिलीजियस लीडर इन ज्यूइश, और उसको पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना दो, कोई मंत्र दो, मेरी स्कूटर पर छिड़को, जिससे मैं स्कूटर को चला सकूं। वो यहूदी टीचर जो होता है, गुरु जो होता है, रबाय, वो पूछता है स्कूटर क्या होती है। उसको स्कूटर ही पता नहीं क्या है। व्यक्ति उसे समझाता है स्कूटर इसे कहा जाता है। फिर वो यहूदी गुरु, पुराने जमाने का गुरु, ऑर्थोडॉक्स, वो अपनी सारी किताबें पढ़ता है, धर्म किताबें, ग्रंथ, कहता है धर्म में तो ये आदेश ही नहीं है स्कूटर चलाने का, नॉट अलाउड, ये तो महापाप होगा, तुरंत इसको आप छोड़ दो। वो व्यक्ति बहुत नाराज हो जाता है, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है। और धर्म गुरु कहता है कि चलाना पाप है, धर्म के खिलाफ है। वो कहता है कि उन्हें सेकंड ओपिनियन लिया जाए, और थोड़े मॉडर्न अगर कोई गुरु होगा उसके पास जाऊं तो उसे पता चलता है एक दूसरा रवाय है, वो शर्ट पैंट बूट ये सब पहनता है, थोड़ा सा मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड, उसके पास जाता है। ये पूछता है क्या एक यहूदी ने स्कूटर चलानी चाहिए। वो गुरु कहता है ऐसा धर्म में कुछ लिखा है, कोई मंत्र है या फिर कुछ प्रार्थना है आपके लिए स्कूटर के लिए। वो जो सोफिस्टिकेटेड गुरु होता है वो भी किताबें पढ़ता है, कहता है ऐसा डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, परंतु यदि तुम्हारा कॉन्शियंस, तुम्हारी अंतरात्मा कहती है नहीं चलानी चाहिए, डाउट है, तो नहीं चलाओ। यह व्यक्ति को फिर उदासी होती है, क्योंकि चलाना तो उसे है ही केवल गुरु से स्टैम्प चाहिए कि ये अलाउड है तो फिर वो बहुत दुखी होता है। वो सोचता है और भी कोई रबाय होगा, कोई ऐसा टीचर होगा एकदम मॉडर्न, तो उसको एकदम से पता चलता है एक दूसरा गुरु है जो बहुत ही मॉडर्न है, वो बस शॉर्ट्स पहनता है और खुद भी मोटरसाइकिल चलाता है तो वो व्यक्ति फिर उस गुरु के पास जाता है, गॉगल पहने हुए है, हैट वो भी उल्टी, शॉर्ट्स पहने हुए है, और वो गुरु की गाड़ी सामने रखी है और वो चाबी चैन घुमा रहा है ऐसे गोल गोल, और अभी जा ही रहा है गाड़ी चालू करने। उसको कहता है हाँ ये बढ़िया है, ये गुरु भी है, रबाय भी है, और मना तो करेगा नहीं। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैंने स्कूटर खरीदी है, स्कूटर चलानी है, कोई प्रार्थना कोई मंत्र आपके पास है। तो गुरु कहता है प्रार्थना मंत्र ये सब क्या होता है, व्हाट इज मंत्र, कहानी खत्म। क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? एक तरफ वो लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्स है, जो रूढ़िवादिताओं में फंसे हुए हैं, उनको ये पता है ऐसा करना है वैसा ही करना है, और दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी मॉडर्न साइंस को इतना पकड़ लिया है कि वो अब यही भूल गया है कि व्हाट इज मंत्र। तो यहां पर भी ऐसे दो है, एक वो जो ये पकड़ के कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, और एक तरफ वो है वो इतने आगे बढ़ गए टेक्नोलॉजी में, टेक्निक्स में, मीडिया में, कि अब यही भूल गए हैं कि व्हाट इज श्रीमत, व्हाट इज मंत्र, जो मूल धारणाएं है यज्ञ की वो क्या है। इसलिए द बेस्ट मेथड क्या है, द मिडल पाथ। मजलिम निकाय, बुद्ध ने अपने मार्ग को कहा कि मेरा मार्ग क्या है, बीच का है, बैलेंस। टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, मॉडर्न साइंस है, साधन है, सुविधाएं है, सबका प्रयोग करो, परंतु पुरानी जो मर्यादा है उसको भूल नहीं जाना, जो मुख्य धारणाएं हैं यज्ञ की उसको भूल नहीं जाना है, मुरलियों में जो मूल सिद्धांत बेसिक टीचिंग्स है उसको भूल नहीं जाना है, परंतु प्रयोग सबका करना है, सभी साधनों का प्रयोग करना है, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गूगल, इमेजेस, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, सब, परंतु ये सब प्रयोग करते हुए वो अवस्था ना आ जाए व्हाट इज मंत्र, वो यही भूलिए, और ये वाली अवस्था भी ना हो, ये सब चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो इन सब चीजों से बहुत ही दूर रहते, हमें कोई कुछ पता नहीं ये सब क्या होता है। हाँ, बाबा ने यूज नहीं किया मोबाइल, हम क्यों क्यों, तो बाबा धोती पहनते थे, तुम भी पहनो। बैलेंस, समय के साथ हर एक को अपडेट करना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। स्कूटर चलाओ, पर किस लिए चलाई जा रही, इस व्यक्ति जैसा हमारी अवस्था ना हो जाए, ना उधर ना इधर, कहां जाना है, बीच में, द मिडल पाथ, ये सेफ है, पुराना पकड़ के भी नहीं रहना है, हम तो बस ऐसे ही सदियों से करते आ रहे हैं, हम 50 साल से ये करते आए, 40 साल से ये कर रहे हैं, 30 साल से ये कर रहे हैं, हमको ऐसा ही पता है, ऐसा ही होना चाहिए, बट समय बदल रहा है, तो विद टाइम चेंज होना है, वो पहले गुरु जैसा भी नहीं, बीच वाले गुरु जैसा भी नहीं, बीच वाला जो गुरु था वो थोड़ा सा डाउटफुल है, उसे खुद भी पता नहीं क्या करना चाहिए, वो भी नहीं, और ये मॉडर्न वाला भी नहीं जो गॉगल पहन के और टोपी पहन के है और गाड़ी की चाबी घुमा रहा है, ना इसके जैसा, ना इसके जैसा, ना इसके जैसा, तीनों गुरुओं में कौन सा गुरु बनना है जिसमें बैलेंस है, ऑर्थोडॉक्स भी नहीं और टू मच मॉडर्न भी नहीं, परंतु बीच में है, परंतु मर्यादाओं को भी पकड़ के है और साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी पकड़ के है, रिलीजन भी है तो साइंस भी है, एक वो लोग है केवल रिलीजन को पकड़ के है, एक वो लोग है केवल साइंस को पकड़ के, दोनों ही भटक जाएंगे, हमारे अंदर दोनों चीजें हो, भावनाएं भी, तर्क भी, ब्रेन भी, हार्ट भी, दिमाग भी, दिल भी, मुरली के प्रति प्यार भी, बट साथ साथ टेक्नोलॉजी भी, टेक्निक्स भी उसको याद रखने की, हाउ टू रिमेम्बर, याद याद शब्द सारी मुरलियों में कितनी बार आता होगा, हजारों बार आता है, सैकड़ों बार आता है, तो आज की जो अव्यक्त वाणी है वो है 25 जनवरी 1970 की, 25 आप एक दिन आगे हो, ये भी अच्छी बात है, आप ये इस गुरु की तरह हो, एकदम एडवांस में चल रहे हो, एडवांस गुरु, तीसरे नंबर वाला, इससे पहले कि हम आज की मुरली चालू करें, एक बहुत पावरफुल और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आपको दे रहे, वो आपको बताना है ये है क्या, एक स्टोरी हम आपको सुनाएंगे दैट विल ब्लो यू आउट, एक ऐसी स्टोरी जो आप सोचेंगे अच्छा ये होता है, तो सभी आके बंद करेंगे और जो स्टोरी हम सुना रहे फनी स्टोरी है, वियर्ड स्टोरी है, नॉनसेंसिकल स्टोरी है। हमारे ब्रेन को तीन चीजें पसंद है, उस दिन भी सुनाया था, चित्र, कहानी और फन। तो सभी आंखें बंद करेंगे और इस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे। आंखें बंद। एक राजा था, देखेंगे एक राजा, उसकी पत्नी थी, उसका नाम था राधा। एक राजा, पत्नी का नाम राधा, दोनों जॉकी पर बैठे, घोड़ा जो होता है ना जॉकी, उसको जॉकी कहते हैं। उस जॉकी ने उन दोनों को गिरा दिया। राजा, राधा जॉकी पर बैठे, जॉकी ने उस दोनों को गिरा दिया। वहां एक फकीर आया और फकीर ने उनको एक मणि दिया, नीलम, नीले रंग का कीमती मणि। फकीर चला गया। राजा को यह जब पता चला तो राजा ने उनसे कहा, इतना कीमती मणि तुम्हारे पास कहां से आया? और दोनों को जेल में डाल दिया। जेल में दोनों बेचारे अकेले चिल्लाने लगे, भगवान को याद करने लगे, पुकारने लगे, वेंकटा वेंकटा। तो वेंकटा तो आया नहीं, तो ऑप्शन टू, शंकरा शंकरा दया करो दया करो। याद करने लगे कि हे शंकर आ जाओ, एक भगवान नहीं आया तो दूसरा भगवान, वो भी नहीं आया। फिर पुकारने लगे नारायण को, हे नारायण आ जाओ, तो नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा, तुमको जो समस्या है ये मैं तुमको कलम देता हूं, इस कलम से लिख के रखो। पर उन्होंने कहा कि हम तो अनपढ़ है, हमारे में कोई प्रतिभा नहीं, हम कैसे लिखे? तो नारायण ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपने हाथों को प्रणाम करो और सीधा मन से रामेश्वर पहुंच जाओ और जोर से चिल्लाओ, हे गोविंद हे गोविंद। स्टोरी पूरी हुई। स्टॉप, आंखें खोलेंगे, फिर से स्टोरी रिवाइज करते हैं। एक था राजा, उसकी पत्नी का नाम क्या था? राधा। दोनों कहाँ गए? जॉकी पर गए। जॉकी ने उन दोनों को गिरा दिया,
तो नीचे गिर गए।
ठीक है, नीचे गिर गए, वहां कौन आया?
एक सन्यासी, एक फकीर आया।
तो उस फकीर ने क्या किया? उनको एक मणि दे दिया, नीलम मणि। जब राजा को पता चला इनके पास नीलम मणि है, तो दोनों को क्या कर दिया?
जेल में डाल दिया।
अब जेल में वो भगवान को याद करने लगे। सबसे पहले किसको याद किया? वेंकटा वेंकटा। वेंकटा तो आया नहीं। फिर दूसरे, अभी जेल में है ना, जेल, दूसरे बड़े राजा ने, नाम राजा है नाम राजा है नाम के राजा, फिर किसको पुकारा सबसे पहले? वेंकटा वेंकटा। फिर उसके बाद पुकारा शंकरा शंकरा, और फिर पुकारा हे नारायण, तो नारायण प्रकट हो गए। तो नारायण प्रकट होने के बाद में नारायण ने क्या किया? उनको एक कलम दे दी कि अपनी जो समस्या है वो लिखो। और उन्होंने कहा, हम तो अनपढ़ है, हमें कोई प्रतिभा नहीं, हम कहां से लिखे? तो फिर उसने क्या कहा, अच्छा तुम एक काम करो, फिर प्रणाम करो और कहां पहुंच जाओ मन से? रामेश्वर पहुंच जाओ और वहां क्या पुकारो? हे गोविंद हे गोविंद। स्टोरी याद हो गई सबको? फिर से बताओ क्या स्टोरी है।
एक राजा है,
एक राजा है, जॉकी पर गए और फिर क्या हुआ? जॉकी ने दोनों को गिरा दिया और फिर फकीर आया, फकीर ने क्या दिया उनको? एक नीलम मणि दे दिया। फिर नीलम मणि उनके पास था, तो राजा ने पूछा, इसके पास कैसे आ गया? दोनों को जेल में डाल दिया। और जेल में बेचारे दोनों चिल्लाने लगे, वेंकटा वेंकटा, नॉट कम, तो दूसरा भगवान, क्योंकि क्या, एक नहीं आता तो दूसरा देखना पड़ता है ना। एक के भरोसे थोड़ी ना रहना पड़ता है, गणपति को पुकारा नहीं आया तो गणपति के भरोसे थोड़ी रहना होता, दूसरा पुकारो। तो उन्होंने पुकारा, हे शंकरा शंकरा दया करो, शंकरा भी नहीं आया। फिर पुकारने लगे नारायण नारायण, तो नारायण प्रकट हो गए। और नारायण ने क्या दे दी उनको, एक कलम दे दी, अपनी समस्या लिखो जो प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हम तो अनपढ़ हैं, हमारे में कोई प्रतिभा नहीं है, तो हम कहाँ से लिखे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम प्रणाम कर लो और रामेश्वरम में पहुंचो मन से और गोविंद गोविंद पुकारो। स्टोरी पूरी हुई। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 1970। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूं। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे, सोचा क्या था और बनते क्या हो। बिना मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते, ऐसे पद्मापद्म भाग्यशाली अपने को समझते हो। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है, इतना इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सम्मान याद रहता है कि कब भूल भी जाता है। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतराई चढ़ते हो, प्रेसिडेंट भी आपके आगे क्या है। इस स्टोरी में आपने क्या कर दिया पता है, भारत के पूरे 14 प्रेसिडेंट को याद कर लिया है। भारत के पूरे 14 प्रेसिडेंट्स को याद कर लिया। सबसे पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद,
पहला
लिखो इधर आ जाओ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, एक था राजा, राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट। उसकी पत्नी कौन थी, राधा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंडिया का सेकंड प्रेसिडेंट।
एस एस राधाकृष्णन, इंग्लिश इंग्लिश में लिखो, फर्स्ट नंबर।
तो सबसे पहला कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो राजा, उसकी पत्नी का नाम क्या था, राधा। फिर वो दोनों कहाँ गए, जॉकी पर गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जॉकी जाकिर, वो उसको वैसे जोड़ दिया है। और उन्होंने क्या कर दिया, उसको गिरा दिया, गिरी, वेंकटा गिरी, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेंकटा गिरी। उस प्रेसिडेंट, उसने क्या कर दिया, उसको गिरा दिया, गिरी। और फिर वहां क्या आ गया, फकीर, फकरुद्दीन अली अहमद, फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फकरुद्दीन अली अहमद, फकीर आया। फकीर ने उनको क्या दिया, नीलम, डॉक्टर संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, क्या दिया उनको, एक नीलम मणि दे दिया। तो नीलम मणि दे दिया, तो राजा ने दोनों को कहां डाल दिया, जेल में, यानी जेल सिंह जी, जेल जी जी एच ए आई एल, यानी जेल सिंह। तो कहां डाल दिया दोनों को, जेल में डाल दिया। और जेल में वो दोनों क्या करने लगे, वेंकटा वेंकटा आर वेंकट रमन्ना, द एट्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या पुकारने लगे, वेंकटा वेंकटा एट्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर वो तो आए नहीं, फिर किसको पुकारा है, शंकरा शंकरा दया करो, शंकर दयाल शर्मा किसको पुकारने लगे, शंकरा को पुकारने लगे, हे शंकरा शंकरा शंकर दयाल शर्मा, वो भी नहीं आया तो किसको पुकारा फिर, नारायण, आर के नारायण, द टेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर के नारायण। अब नारायण आए और नारायण ने क्या किया, कलम दे दी, एपीजे अब्दुल कलाम, कि भाई तुम्हारी जो भी समस्या है वो लिखो। उन्होंने कहा हम अनपढ़ हैं, हमें प्रतिभा कहाँ है, प्रतिभाताई पाटिल, फिफ्थ ट्वेल्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभाताई पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने क्या कहा, कलम दे दिया। तो उन्होंने कहा हम में तो प्रतिभा है नहीं, तो फिर कौन, उन्होंने क्या कहा कि तुम रामेश्वर जाओ और वहां पर क्या पुकारो, नहीं वहां पर प्रणाम करो, प्रणव मुखर्जी, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां प्रणाम करो और कहां जाओ, रामेश्वर, रामनाथ कोविंद, लास्ट गोविंद, के ओ वी आई एन डी, वहां क्या को पुकारो, हे गोविंद पुकारो। 15वां इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सभी जानते हैं द्रौपदी जी मुर्मू। बैठ जाओ। स्टोरी याद हो गई? स्टोरी हमने देखी, हमने विजुअलाइज की, ये प्रेसिडेंट थे। अगर किसी को पूछा जाए ये प्रेसिडेंट्स के नाम गिनाओ तो कितना मुश्किल काम है, याद रहता है क्या? पर हमने क्या कर दिया, उसको एक स्टोरी बना दी। और स्टोरी भी कैसी बनाई, एकदम फनी, वियर्ड, एब्सर्ड। ये स्टोरी अभी जिसने याद कर ली और जिसने देखी थी जब हमने सुनाई, कभी भी नहीं भूलेंगे। ये भारत के सारे प्रेसिडेंट्स की लिस्ट है। इसको कहा जाता है एडवांस्ड स्टोरी मेथड। आज का होमवर्क, आपको हम लिस्ट देंगे आज कुछ दादियों की और यज्ञ के वरिष्ठ जो है। यहाँ पे डेट लिखी है, डेट याद नहीं रखना है, बट ये ग्रुप में आएगा, इसकी आपको एक स्टोरी बनानी है। सबसे पहला नाम है 1 जनवरी, पर वो उसमें उनकी डेट्स लिखी हुई है, 18 जनवरी, 1 जनवरी, 28 जनवरी, उनके दिन लिखे हो, दिन को छोड़ दो, पर इसी क्रम से इसकी एक आपको स्टोरी बनानी है। सबसे पहले 1 जनवरी ब्रजेंद्र दादी, 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा, तो ये ऐसे सारे नाम है, तो इन नाम की क्या करनी है, एक स्टोरी बनानी है। कैसी स्टोरी बनाएंगे, जैसे ये एक फनी स्टोरी थी और इस छोटी सी स्टोरी से आपने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसे याद रहता है? बिल्कुल भी याद नहीं रहता, बहुत मुश्किल है। अभी तो इसके आगे क्या है वो पूछेंगे तो भी याद है। वेंकट रमन की बात कौन है, वेंकटा वेंकटा की बात क्या पुकारने लगे, शंकरा शंकरा, शंकर दयाल शर्मा, वो भी याद हो गया। अभी इसके पहले क्या और उसके पहले बाद में क्या है, इस हद तक। तो बैड मेमोरी और गुड मेमोरी कुछ भी नहीं होता है, दो ही मेमोरी होती है, ट्रेंड मेमोरी, अनट्रेंड मेमोरी। एक मेमोरी जिसको ट्रेनिंग दी गई है, एक मेमोरी जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ये नहीं कह सकते मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता है मुरली, इनको बहुत याद रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग है, सिंपल ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग हम अपने मन को देंगे, अपने माइंड को देंगे। तो आपको ये आज काम दिया जाएगा। ऐसे ये 25 लिस्ट है, 25 है नहीं, 25 से भी ज्यादा है। इसकी एक लंबी सी स्टोरी बनानी है। ब्रजेंद्र दादी, ब्रह्मा बाबा, रमेश भाई जी, पुष्पा शांता दादी, भोली दादी, आत्म मोहिनी दादी, विश्व रतन दादा, मिठू दादी, चंद्रमणि दादी, गुलजार दादी, विश्व किशोर भाऊ, निर्मल शांता दादी, जानकी दादी, कमल सुंदरी दादी, जगदीश भाई, ब्रिज शांता दादी, शांतामणि, वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी क्या बनानी है, एक स्टोरी। और उस स्टोरी बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको रिवाइज करना और फिर उसको विजुअलाइज करना, याद करना, तो वो याद हो जाएगा। तो ये क्या है, टेक्निक्स। भेजना नहीं है इसको, याद करना है। अगर याद करके बिना देखे लिख सके तो जो लिखा हुआ है वो भेज दो, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपनी मुरली की तरफ। ये पूरा हो गया, प्रेसिडेंट को याद किया इसलिए ये स्टोरी बताई। प्रेसिडेंट भी आपके आगे क्या है, इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सम्मान, याद रहता है कि कब भूल भी जाता है। स्मृति मृस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। प्रतिभा ताई पाटिल के पहले कौन था और उनके बाद, उनके बाद प्रणव, और तीसरे नंबर पर कौन था, और जाकिर हुसैन के बाद फकरुद्दीन अली अहमद, ठीक। तो चलते हैं आज की मुरली की तरफ। तो आज की मुरली में बहुत सारे महावाक्य हैं। पहले हम उन 10 लोकेशंस को याद करेंगे। 31 वापस लिख दो, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये 40 लोकेशंस है। तो मुरली से हम 10 महावाक्य लेंगे और 10 महावाक्यों को इन 31, इन 10 लोकेशंस में डाल देंगे। तो हमारा सबसे पहला लोकेशन क्या है, 31, कर्म क्षेत्र, वर्क प्लेस। 32, बेडरूम, आपका कमरा, ये है सेकेंड लोकेशन, 32 लेके। 33, मार्केट, अपने डायरी में लिखते जाओ इसको, लिखेंगे ना तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हमारे परमानेंट लोकेशन से 34 ग्राउंड, 35 एटीएम, एटीएम के पास क्या है बैंक, 36 बैंक, 37 स्कूल, 37 कॉलेज स्कूल, 37 स्कूल, 38 कॉलेज, कॉलेज 39 रिहैब सेंटर, और लास्ट 40 पेट्रोल पंप। अभी इससे पहले कि हम मुरली रिवाइज करें और मुरली की पॉइंट्स को इन लोकेशन में डालें, आंखें बंद करेंगे और मन से इन लोकेशंस पर पहुंचेंगे अपने फरिश्ता रूप में, और एक एक लोकेशंस में जाकर आत्माओं को सकाश देंगे। हम लोकेशंस का नाम लेंगे, अब फरिश्ता रूप में वहां पहुंचो, और रिवाइज भी करेंगे लोकेशंस को, साथ साथ सकाश भी देंगे। स्टार्ट, आंखें बंद। 31 कर्म क्षेत्र, अपने ऑफिस को देखेंगे, टेबल, कुर्सी, ऑफिस का वातावरण, या फिर घर में माता है तो किचन। मैं फरिश्ता हूं, जो भी जिसकी ड्यूटी है, और सारे दिन भर जो जहां रहता है, या नाइट ड्यूटी है, इवनिंग ड्यूटी है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, कोई भी, वहां पर पहुंच के उस स्थान को, आत्माओं को, मुझसे पवित्रता की किरणें जा रही, उस स्थान को डिटेल में देखेंगे। टेबल पर क्या रखा है, दरवाजा किस तरफ है, खिड़कियां किस तरफ है, उस वर्क प्लेस को सकाश। किचन है तो उन बर्तनों को देखेंगे, उन बर्तनों को सकाश। खाने की सामग्री है, उन सामग्री को सकाश। 32 अपने कमरे में पहुंच जाएंगे, बेडरूम, किस तरह से रखा है वो बेडरूम, वो बेड किस तरफ है, बेडशीट का कलर क्या है, दीवारें कैसी है, अपने बेड को सकाश, दीवारों को सकाश, खिड़कियों को सकाश, वस्तुओं को सकाश। 33 अब पहुंच जाएंगे उस जगह, उस मार्केट की तरफ जहां आप हमेशा जाते हैं, जो जाना पहचाना सा, चित परिचित सा है, दुकानें हैं, लोग घूम रहे हैं, सभी आत्माओं को प्रभु प्रेम की किरणें में दे रहा। 34 मार्केट को ध्यान से देखेंगे, मार्केट में चल रहा हूं, अप्रभावित हूं, फरिश्ता हूं। फिर पहुंच जाओ ग्राउंड की तरफ, खुला मैदान है, या तो बच्चे खेल रहे हैं, मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें निकल धरती में जा रही। 35 एटीएम मशीन, मेरे पास जो खजाने हैं वो इन पैसों से कहीं अधिक है, मेरे लिए पैसों से अधिक सूक्ष्म खजाने, मैं खुद ही स्पिरिचुअल एटीएम हूं। 36 बैंक में हूं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, काउंटर है, अलग अलग काउंटर्स पर लोग हैं, अंदर सिक्योरिटी वाला है, मैं स्वयं खजानों का मालिक हूं। संगम पर बाप ने जो बैंक खोली है, मेरे पिता ही इस बैंक के मालिक हैं। मैं भरपूर हूं। कुछ समय बिताओ यहां पर। फिर चलो स्कूल की ओर। 37 असंख्य विद्यार्थी है। सुबह का समय प्रार्थना में करबद्ध होकर खड़े हैं। मैं साक्षात सरस्वती हूं, सबको विद्या का वरदान दे रही हूं। सभी स्टूडेंट्स फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ू। 38 एक कॉलेज में प्रवेश। यंगस्टर्स घूम रहे हैं, यूथ युवा बल मुजात्मा से ब्रह्मचर्य का प्रकाश निकल सभी युवाओं में भर रहा है। युवा संगठित हो रहा है, युवा शक्तिशाली बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। देश के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक हो रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो रहा है। फिर पहुंचो 39 रिहैब सेंटर। 39 अक्षर लिखे हुए वहां पर, 39। असंख्य आए हैं लोग वहां पर जो व्यसनी है, जिनके घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, माँ बाप परेशान है, पत्नी बच्चे परेशान है। ऐसे सभी लोगों के बीच में मैं खड़ा हूं और सबको उनके व्यसनों से मुक्त कर रहा हूं, शक्ति भर रहा हूं। अब लास्ट पहुंच जाओ पेट्रोल पंप पर। लोग आ रहे हैं अपने अपने गाड़ी में पेट्रोल भरने। मुजात्मा से रूहानी शक्ति उस पेट्रोल में जा रही है और उनकी गाड़ी के साथ साथ वो आत्माएं भी शक्ति से भर रही है, पेट्रोल से भर रही है, स्पिरिचुअल पेट्रोल। आंखें खोलेंगे तो ये हमारे हैं 10 लोकेशंस। याद हो गए 34 35 36 40 39 रिहैब, 38 32 31। ठीक है, तो ये थे हमारे लोकेशंस 31 से लेके तो 40 तक। अब आज की जो मुरली है, इसमें से हम कुछ कुछ महावाक्य उठाएंगे। पहले लोकेशन लिख के रख देना है, ठीक है, और जैसे जैसे मुरली पढ़ते जाएंगे फिर जो जो अच्छा लगा वो उसमें डालते जाना, जो जो अच्छा लगा उसमें डालते जाना। ये है फर्स्ट स्टेप लोकेशन लिख देना। सेकंड स्टेप मुरली पढ़ना चालू करना। अव्यक्त मुरलियों के लिए मुख्य है ये, साकार के लिए हमारे वो दूसरे लोकेशन है 25 या 20 लोकेशन जो बनाए हैं शुरुआत में। मधुबन से विशेष स्नेह, अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। आज की मुरली का महावाक्य क्या है? मधुबन से, यहां से, ऐसा शब्द है पर मधुबन की बात चल रही है। विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। कहां डाल दोगे इसको? वर्क प्लेस। तो अपने वर्क प्लेस पर क्या करके जाना है आज? मधुबन में सुबह अमृत वेला आ गए मन से या स्थूल में आ गए, विशेष स्नेह भर के जाएंगे तो स्नेह क्या करेगा? पत्थर को भी पानी कर देगा। आज पत्थर जैसी आत्मा आने वाली है हमारे वर्क प्लेस पर, कर्म क्षेत्र पर कौन आने वाला है? कट्टर विरोधी, विरोध करने वाला कोई ना कोई तो आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। पर हमें क्या करना है? स्नेह की शक्ति से अपने आप में स्नेह भरना है। और उसको क्या करना है? स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है, वो भी क्या कर देगा उसको, उसका हृदय को, उसके हृदय को पिघला देगा। तो ये हमारा सबसे पहला काम है। तो जब भी कर्म क्षेत्र को याद करो आज दिन भर, तो क्या करना है? जो भी आएंगे उनको हमें स्नेह देना है। पत्थर वाले भी आएंगे, पत्थर समान भी आएंगे, तो उन्हें पानी बना देना। दूसरा, जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। आज अपने कमरे में नो टाइम वेस्ट, कमरे में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कहां होता है? रूम पर ही होते ना। रूम पे जाते ही थोड़ा रिलैक्स होता है, बिस्तर पर जाते ही, जब तक अपने ड्यूटी पर है, काम पर है, ऑफिस में, सब ठीक। पर यहां सारे काम हो गए दिन भर के, अभी मैं हूं और मोबाइल है। बफेलो जोन, बफेलो जोन में जैसे बफेलो होता है ना भैंस, पानी में आराम से, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको ना तो कोई मुरली पढ़नी है, ना अमृत वेला करना है, ना कुछ करना है। भैंस है, मैं अपने आप को देखना है, ये मेरा बिस्तर जैसे अब भैंस है, ये भैंस और वो कीचड़ में, ये मुझे नहीं बनना है। सफेद भैंस। जितनी भी अपनी शक हिम्मत है वह पूरी लगानी है, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इसका ध्यान रखना है। सभी साथ में बोलेंगे, जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इसका ध्यान रखना है। एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट उधर ही होता है, बेड पर। तो बेड पर नो टाइम वेस्ट, कर्म क्षेत्र पर स्नेह देना। तीसरा, मार्केट, मार्केट पहुंच जाओ। अब हम बड़े बड़े वाक्य ले रहे हैं थोड़े, और आगे जाके इससे भी बड़े बड़े लेंगे, क्योंकि क्लास आगे बढ़नी चाहिए। अब रूह को ही देखना है, जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी ही बने। अब रूह रूह को देखता है तो राहत मिलती है। कितना अच्छा वाक्य है। शरीर को देख देख कर क्या हुआ? कितना देखोगे शरीर को? शरीर को ही तो देखने की इच्छा है संसार में सबको, स्त्री को, पुरुष को देखना है, पुरुष को, स्त्री को देखना है, यही सारा खेल है संसार का, जिस्म को देखना। बाबा कह रहे अब रूह को ही देखना है, जिस्म को तो बहुत देख देख कर थक गए। मार्केट में घूमते समय रूह को देखते देखते घूमना। जिस्म को देखने से क्या मिला? 10 बातें बताओ जो मिली। दुख, अशांति, धोखा, भ्रम, मोह, आकर्षण, उत्तेजना, व्यर्थ, टेंशन, और क्या मिला? शरीर को देखने से शरीर का आकर्षण, शरीर को देखने से शरीर के प्रति घृणा, इसका शरीर ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये सुंदर है, ये काली है, ये गोरी है, ये मोटी है, ये पतली है। जेलसी, ये मेरे से सुंदर क्यों है, ये मेरे से ज्यादा हैंडसम क्यों है, इसके बाल ऐसे अच्छे हैं लंबे, मेरे ऐसे क्यों है पतले और झड़ रहे, मैं टकला क्यों और हम ज्यादा अच्छे, हम ज्यादा अच्छे, हमारे कपड़े अच्छे, सुपेरिटी, और ये गरीब है, उनसे दूर, फटे पुराने कपड़े, हमारे अच्छे। कितनी बातें आती है शरीर को देखने से, इसकी भी लिस्ट बनाई जा सकती, शरीर को देखने से क्या क्या होता है। तो बाबा कह रहे अब रूह को ही देखना है, जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए, इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी मिला। और जिस्म को देखने के लिए कितना ये सब करना पड़ता है, पुरुषार्थ, पैसे खर्च, दोस्ती, एनर्जी, व्यर्थ की बातें पहले, उसके बाद में देखने तक पहुंचते। अब रूह को ही देखना है तो राहत मिलेगी। तो मार्केट में हमारा कौन सा पॉइंट है? रूह को देखना। फिर पहुंचो ग्राउंड में। जो शूरवीर है उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता। जो शूरवीर है तो ग्राउंड में कौन घूम रहा है आज? शूरवीर घूम रहा है। और शूरवीर जो होता है उसका समय खुद के ही विघ्नों को हटाने में अगर जा रहा है तो वो शूरवीर कैसा? उसे तो क्या है, सर्विस में अपना समय लगाना होता है, अपने ही विघ्नों में लगे हुए है। मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा वैसा, उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है, लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं, इसी की सोच चल रही है दिन रात। मेरी उन्नति कब होगी, डिपार्टमेंट में मुझे ऊंचा दर्जा कब मिलेगा, यही चलता रहता है ना माइंड में दिन रात। सर्विस के विचार है क्या? विश्व की आत्मा है दुखी है, बाबा कहते हैं वो तुम्हारी तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं, उनके दुख के आलाप, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, तो उनके दुख के आलाप तुम्हारे तक नहीं पहुंचते, और हम कहते हैं बाबा हमारे दुख के आलाप तुम्हारे तक क्यों नहीं पहुंचते, पहले तुम हमारी सुनो, फिर हम भक्तों की सुनेंगे, फिर हम दुखी आत्मा, पहले तुम हमारे दुख दूर करो, हम खुद ही बहुत ज्यादा दुखी है, टू मच। संसार के लोग फिर भी कम दुखी है क्योंकि उनकी इच्छाएं कम है, हमारा तो लालच भी बड़ा है, ऊंच पद, कितने बड़े बड़े लालच है। हमारे लालच के सामने उनको तो क्या चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चा चाहिए, पति चाहिए, घर बंगला गाड़ी ये सब चाहिए, हमें तो कुछ बहुत ही ज्यादा चाहिए। तो ग्राउंड में कौन हूं मैं? शूरवीर, जिसका समय अपने विघ्नों में खत्म करने के लिए नहीं जा रहा, किसमें जा रहा है, उसका पल पल सतत सेवा में लगा हुआ, संकल्प ही सेवा के है। फिर एटीएम मशीन, जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ाना है। कैसे जोड़ेंगे इस महावाक्य को यहां पर सारे लोग? जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ाना है। इस मुरली का हम टॉपिक दे रहे हैं हाई जंप लगाने हैं बाबा ने का, अभी केवल भागने से भी नहीं होगा, हाई जंप। तो सब लोग किधर भाग रहे हैं? स्थूल पैसों की तरफ, एटीएम की तरफ भाग रहे, पर हम किधर भाग रहे? नोटबंदी हो गई तो सब भाग रहे एटीएम की तरफ, परंतु हम खुद ही स्पिरिचुअल एटीएम है। जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ाना है, परंतु इन स्थूल पैसों के पीछे नहीं, किन पैसों के पीछे? रूहानी पैसों के पीछे, ज्ञान गुण शक्तियां, जो बाप के गुण जो मेरे गुण, जो बाप की शक्ति है वो मेरी शक्ति है, इसी मुरली में है, ये मेरा फर्ज है। जो बाप में गुण है जो मुझ में आने चाहिए तो ही सर्वगुण संपन्न बनेंगे। मुरली पढ़ी है ना सबने, उसमें है ये सब, नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ लेना और फास्ट फास्ट पढ़ लेना स्पीड रीडिंग से, ठीक है, और फिर भले रिवाइज करो उसको। नेक्स्ट आ जाओ बैंक की तरफ। अब ये पांच तो पूरे हो गए, पांच को एक बार रिवाइज कर लेते। पहला, कर्म क्षेत्र में क्या, बाप से स्नेह लेना है यहां से, और क्या करना है, आत्माओं को पत्थर समान आत्माओं को भी पानी बना देना, एक। दूसरा, टेस्ट नहीं करना है बेडरूम में, क्या इतनी हिम्मत है, जितनी भी हिम्मत है पूरी लगा देनी है, और सेकंड भी व्यर्थ ना जाए इसका ध्यान रखना है, कहां पर, कमरे में। फिर पहुंचे मार्केट में, क्या शरीर ही शरीर, अलग अलग ड्रेस, पर हम देख किसको रहे, रूह को देख रहे, रूह को, शरीर को देखने से क्या मिला, दुख ही मिला, अब रूह रूह को देखे तो राहत मिलेगी। नेक्स्ट, ग्राउंड में आ जाए, ग्राउंड में कौन चल रहा है आज, शूरवीर चल रहा है। अगर क्रिकेट खेलने जाओ, फुटबॉल खेलने जाओ तो सोचो कौन खेल रहा है फुटबॉल, शूरवीर, और शूरवीर क्या होता है, अपने विघ्नों को ही नहीं सोचता है, वो सर्विस में अपना समय लगाता है। फिर आ जाओ एटीएम की तरफ, तो अभी क्या, समय जैसे तेज दौड़ रहा है वैसे हमको क्या करना है, खुद को भी दौड़ाना है। मुरली में अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मुरली में यही शब्द है स्पीड, स्पीड को बढ़ाना है। मुझे भी, लोग कैसे दौड़ते हैं ना एटीएम की तरफ पैसे जमा करने, मुझे भी अपने स्पिरिचुअल पैसा, स्पिरिचुअल करेंसी, स्पिरिचुअल मनी, स्पिरिचुअल डॉलर, स्पिरिचुअल पाउंड्स, स्पिरिचुअल सिक्के जमा करने। तीसरी सिटी, पहली सिटी, दूसरी सिटी, तीसरी सिटी मुरली में है, मम्मा गए, ब्रह्मा गए, अभी तीसरी सिटी बज गई। फिर आ जाओ बैंक की तरफ। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं है, बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते, यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगी। इतना बड़ा वाक्य यहाँ डाल दिया, अभी यहां से थोड़ी सी हम डिफिकल्टी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ एक एक वाक्य था
अभी थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे।
बड़ा वाला वाक्य डाला, क्या बोला?
बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्प भी नहीं रोक सकते। बाप सृष्टि को बदलते, तुम खुद को नहीं बदल सकते, सोचो तो अपने ऊपर शर्म आ गई। अब बैंक और इस वाक्य को जोड़ो। बैंक किसकी है? मेरे बाप की। और मैं कटोरा लेके भीख मांग रहा हूं, कैसा सीन है ये? वो भी बैंक के बाहर। हमारे बैंक, बाप की बैंक है, उसने ही खोली है और हम उसी के बाहर बैठ के भीख मांग रहे हैं, कैसा शोभता है ये? बाबा कहते शर्म आनी चाहिए तुमको। बाप सर्वशक्तिमान, बच्चों को संकल्प को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलने वाला, तुम अपने आप को बदल नहीं सकती। यही सोचो कि बाप क्या हम क्या, तो शर्म आएगी। आगे जाओ स्कूल में। स्कूल की तरफ पहुंच गए, वही वाली स्कूल में चले जाओ जहां हम, अगर यहां कोई स्कूल याद नहीं रही तो बचपन की उस स्कूल को याद करो जहां आप पढ़े थे, वो प्राइमरी, वो सारे। अपने टीचर्स को याद करो, एक एक टीचर को। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहां संबंध की रख जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए नहीं देखो। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है, साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा है। कितना बड़ा वाक्य और कितना पावरफुल वाक्य है। बाकी दूसरे दूसरे संबंधों में कितने भी संबंध बनाओ संसार में, उसमें दुख ही है। इस संसार में जो संबंध है, संबंध अर्थात बंधन, कुछ भी हो, फिर वो किसी को मां बना लो, बाप बना लो, बेटा बना लो, बेटी बना लो, दादा बना लो, दादी बना लो, चाचा मामा काका भैया, भैया राजा, कुछ भी बनाओ, दुख ही है। एक से संबंध रखना है तो स्कूल और इसको कैसे जोड़ेंगे? स्कूल का टीचर, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनका संबंध किसके साथ है? टीचर के साथ। अगर वो आपस दूसरे में एक दूसरे के प्यार में फंस गए तो उधर क्लास चालू है और इधर लव लेटर लिख रहे हैं एक दूसरे, ध्यान किधर है? उधर वो उसको देख रहे हैं, वो उसको देख रही है। एक से संबंध रखना है तो अवस्था भी एक रस होगी। अगर और कहां संबंध की रख जाती है तो अवस्था एक रस नहीं रहती। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक बाप के और कुछ भी देखते हुए नहीं देखो। यह जो कुछ देखते हो वो कोई वस्तु रहने वाली नहीं है, सदा रहने वाली एक ही अविनाशी वस्तु है। कौन सी? एक बाप। तो उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा। इसके लिए स्कूल के सभी बच्चों को भी सिखाओ कि खाली टीचर पर फोकस करें, आपस में नहीं, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स। फिर पहुंचो कॉलेज में। सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है तो उसकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना। माया आ नहीं सकती कॉलेज में, माया बहुत आती है कॉलेज में, नशा भी कहते हैं। तो नशा तुमको कौन सा होना चाहिए? ये वाला नशा होना चाहिए, परमात्म नशा, रूहानी नशा, रूहानी मस्ती, इलाही मस्ती, नारायणी मस्ती, ये खुमार। सर्वशक्तिवान के बच्चे, ये नशा नहीं भूलना। तो सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है तो उसकी शक्ति के आगे माया की शक्ति। सबसे ज्यादा माया कहाँ आती है? कॉलेज में। कितनी माया होती है, भयंकर माया होती है, क्या कुछ नहीं होता है वहां माया का। तो कॉलेज माया, कॉलेज नशा। हमारा नशा कौन सा है? सर्वशक्तिवान के बच्चे, ये नशा। माया की शक्ति कुछ भी नहीं है क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है। लास्ट 39, रिहैब सेंटर। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में बदल जाए, सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कभी नहीं, यह मंत्र याद रखना है। एक सेकंड में बदलना है। जो रिहैब केंद्र पर आ रहे हैं वो क्या हो रहा है उनका? एक सेकंड में सारे व्यसन, सारे विकार, सारे रोग सब खत्म, कुछ भी नहीं बचा रिहैब सेंटर में आते ही, नशा मुक्ति केंद्र में आते ही। तो जो भी बात सामने आए वह लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में बदल जाए, सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं, यह मंत्र याद रखना है। जो कुछ करना है अभी करना है। दिस द टाइम इज नाउ, द टाइम इज हियर, यही समय है। कल करूंगा, बाद में करूंगा, देखूंगा देखूंगा वगैरह नहीं, अब स्टार्ट नाउ। हाँ पहले पढ़ के रखना पड़ता है, पहले तैयारी चाहिए, पेपर के टाइम पे नहीं करना होता है। जो पहले से तैयार होते हैं ना वो निश्चिंत होते, पेपर के समय वो सोते रहते आराम से। एक जैसे एक है ना, एक बहुत बड़ा किसान होता है जिसका बहुत बड़ा खेत है और बहुत सारी चीजें है उसके पास, तो उसको एक नौकर की आवश्यकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सारा ध्यान रखे, फसल, खेत, ट्रैक्टर, गराज, सब कुछ। तो एक व्यक्ति आता है इंटरव्यू के लिए, तो वो कहते तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं तुमको क्यों रखूं? तो वो व्यक्ति कहता है आई कैन स्लीप थ्रू द स्टॉर्म, जब तूफान आएगा ना तब मैं सोता हूं। उसको समझ नहीं आता है मालिक को ये क्या बोला, परंतु फिर भी उसको पसंद आ जाता है। कभी कभी क्राइटेरिया हो जाता है कि वो पसंद ही आ गया, अब क्या करे, लव एट फर्स्ट साइड। उसका चेहरा ही ऐसा था कि एकदम भाग गया मन को, उसको रख लिया। तो उसको काम दे दिया, समझा दिया अपना ये काम करना है। और एक दिन अचानक जब सब सोए रहते आधी रात को, तूफान आता है, जोर से तूफान आता है। तो ये मालिक उठता है और देखता है, पुकारता है उसके नाम को, उस नौकर को, वो नौकर कहीं है ही नहीं, नौकर गायब। उसको लगता है धोखा दे दिया नौकर ने। फिर वो सब जगह ढूंढने लगता है, जाता है, सबसे पहला देखता है जितने उसके जो खेत की फसल होती है सब बांध के अच्छे से रखी हुई है। फिर देखता है जो औजार सामान है वो सब अंदर गराज में प्रॉपर रखा हुआ है। फिर और देखता है सब जगह कि वो जो उसके जो जानवर है, पशु जो सारे, वो सब एक तरफ उनका उसमें है, तबेले में। शटर जो है वो दुकान का, वो सब डाला हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित रखा हुआ है। और उसको जाके देखता है वो नौकर सो रहा है, तब उसे याद आता है इसने क्या कहा था, आई स्लीप थ्रू द स्टॉर्म, जब तूफान आता है तब मैं सोता हूं। पहले से ही सारी तैयारी कर रखी है। तो पहले से तैयारी करनी होती है, समय पर नहीं, तूफान आएगा तो आप भागो, ये करो वो करो, शुरुआत से इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है कि तूफान जब आया तब वो सो रहा है, आई स्लीप थ्रू द स्टॉर्म। रिहैब सेंटर में क्या, सामने आए लक्ष्य रखो, एक सेकंड में बदल जाए, सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं, अब भी करना है जो करना है, बाद के लिए नहीं। फिर लास्ट है पेट्रोल पंप, विघ्नों को मिटाने की युक्तियां, अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे, युक्तियां भूल जाती है तो पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। तो नई नई टेक्निक्स चाहिए, एक टेक्निक काम नहीं कर रही है ना, कोई पास्ट है, कोई घटना है जो हमें डिस्टर्ब करती रहती है। हो सकता है आपने केवल एक टेक्निक यूज की, दूसरी भी तो टेक्निक होगी, हर एक के जीवन में कितनी बातें आती रहती है, एक ही दिन में 100-100 बातें आती है, तो हर एक ने कैसे उसको जीता वो दूसरों से सीखने हैं। तो टेक्निक्स, युक्तियां किस थी, विघ्नों को मिटाने की युक्तियां, सदैव याद, ये अगर याद रहे तो पुरुषार्थ ढीला नहीं होगा। कैसे जोड़ेंगे दोनों को, पेट्रोल पंप और युक्तियां। पेट्रोल नहीं भर रहे, युक्तियां भर रहा हूं मैं, और पहले से रख के रखा है सारा, मतलब एकदम गाड़ी का पेट्रोल जीरो होने के बाद पैदल ढकेल ढकेल के लेके जाने से पहले अच्छा तो है पहले ही भर लो पेट्रोल, पहले से ही युक्तियां, ज्ञान का पेट्रोल भर के रखो। तो ये हो गया पूरे हमारे 10 महावाक्य। तो चलो अब हम बीच से रैंडम पूछेंगे आपको, एटीएम, एटीएम, समय कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तुम्हें समय से भी आगे जाना है, तुम्हारी दौड़ कैसी हो, समय से भी आगे। मार्केट, रूह को नहीं, अब इसमें जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे वैसे के वैसे वहां वाक्य आने चाहिए, पर सार पकड़ लिया ना कि शरीर को देखना ही नहीं है, कहां देखना है, आत्मा को देखना है, कहां पर, भीड़ भाड़ में। अब जरूरी है मार्केट को भी भूल जाओ, ये तो एक हैंगर है बस, ये तो एक लोकेशन मात्र है, मेन पॉइंट तो मुरली है। वर्क प्लेस, पत्थर वाली आत्मा आने वाली है, पानी बनाना है उसको। बेडरूम, हिम्मत, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं। आज जो जो अपना टाइम वेस्ट रूम पर करते हैं ना, ढूंढो कहाँ टाइम वेस्ट होता है। अगर मोबाइल से होता है तो सोते समय मोबाइल दूर रखो, मोबाइल दूर रख देना या स्विच ऑफ करके बाजू में रख देना, ताकि वो हाथ ही ना जाए। बेड पर गए तो खाली सोना है, थोड़ी देर नींद नहीं आएगी फिर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल में क्या, एक टीचर, एक से संबंध, और लव लेटर इधर उधर नहीं लिखते रहना, आई लव यू, आई मिस यू, वेर आर यू, कब आओगे, कहाँ हो, कैंटीन।
कैंटीन में आ जाओ जल्दी, वो कहता है मैं क्लासरूम में हूँ, कहता है छोड़ो क्लास आओ इधर बातें करेंगे थोड़ी अच्छी अच्छी। बाबा को लव लेटर लिखो फिर, वो भी है। नेक्स्ट, कॉलेज में नशा और दूसरा माया, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है तो माया आ नहीं सकती। नशा कौन सा है? पाप के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे नशा। रिहैब सेंटर में एक सेकंड में, अब नहीं तो कब नहीं। पेट्रोल पंप में युक्तियां होनी चाहिए हमारे पास, एक ऑप्शन बी हमेशा तैयार रहना चाहिए, ऑप्शन ए फेल्ड, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एक किताब है इंग्लिश में ऑप्शन बी, गूगल या फेसबुक की जो सीईओ है ना, जो सीईओ वो जो उसने लिखा है वो किताब, उसके पति की डेथ हो जाती है अचानक से, वो इतना डिप्रेशन में चली जाती, इतना डिप्रेशन कि जीवन ही खत्म, कुछ करना क्या है अब, तो अचानक उसको फिर मार्ग सोचता है कि नहीं ऑप्शन बी भी है। ये ऑप्शन ए है दुखी होना, दर्द में रहना, पश्चाताप करते रहना, ऑप्शन बी भी है एक जगह, फिर वो ऑप्शन बी ढूंढती है, उस किताब में पूरा वर्णन। नेक्स्ट, ग्राउंड, ग्राउंड में कौन घूम रहा है? शूरवीर। फुटबॉल कौन खेल रहा है? शूरवीर। क्रिकेट कौन खेल रहा है? शूरवीर। टहल कौन रहा है? शूरवीर। रनिंग कौन कर रहा है? शूरवीर। बेडरूम, नो वेस्ट टाइम। वर्क प्लेस, ग्राउंड, शूरवीर। एटीएम, दौड़ी। और बैंक शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बाप की दूं बैंक है और सामने कटोरा लेके खड़े हो, नाम बदनाम कर रहे हो बाप का उसके बाद में स्कूल, एक से संबंध और किसी से कोई संबंध नहीं। रग, मोह की रगे कहीं जाती है तो स्थिति एकरस नहीं रह सकती। कॉलेज, माया, नशा। रिहैब सेंटर, एक सेकंड में बदलना, अब नहीं तो कब नहीं। और लास्ट, हाँ, युक्तियां नई नई रचनी है। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। भारत के प्रेसिडेंट एक बार फिर से गिना दो। ए राजा नहीं बनाना, अभी डायरेक्ट बताओ, प्रॉपर बताओ। वो तो हमने स्टोरी बताई थी, सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, तीसरा जाकिर, हाँ तीसरा, चौथा फकरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद में गिरी, गिरी वेंकटा गिरी, चौथा, पांचवा फकरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद में नेक्स्ट नीलम संजीव रेड्डी, और फिर क्या चिल्लाने लगे, वेंकटा वेंकटा एस वेंकटा, उसके बाद में नेक्स्ट शंकरा शंकरा शंकर दयाल, नेक्स्ट आर के नारायण, उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे दिया, कलम एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद में नेक्स्ट प्रतिभा, हमारे पास प्रतिभा ही नहीं है वो कहते हैं, तो प्रतिभा पाटिल, उसके बाद में फिर प्रणव मुखर्जी प्रणाम, और उसके बाद में रामनाथ गोविंद, रामेश्वर में हे गोविंद हे गोविंद, ये है टेक्निक। तो हर चीज को समझने की, जानने की, याद रखने की टेक्निक्स होती है। वैसे मुरली भी है, उसमें भी कीवर्ड्स निकाल दिए, कीवर्ड्स प्लॉट कर दिए, एक फ्लो चार्ट बना दिया, उसकी स्टोरी बना दी, अब वो हमें याद हो गई, तो नींद नहीं आएगी, नवीनता रहेगी। नहीं तो क्या होता है, मुरली छह पेज की मुरली पढ़ना जोक नहीं है, नींद करा दे तो पूरा नींद में डूब जाते हैं अंदर बुद्धि को बिजी रखना है। अच्छा, ओम शांति, मन में याद करेंगे, ठीक है, 10 लोकेशंस को विद महावाक्य के साथ, ओम शांति।
ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उद्धान की। ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड। ये ऊर्जा है अग्नि कुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उद्धान की। संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव, व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आत्मा शुद्धि से